نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ آج ہم جمع ہوئے ہیں اپنے ایمان کے بارے میں سیکھنے کے لیے. بہت ہی یہ اہم موضوع ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ سب لوگوں کو یقیناً اپنے ایمان کی کچھ نہ کچھ فکر ضرور ہے، اسی لیے آپ نے یہ لیکچر جوائن کیا. الحمدللہ ایمان کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، میرا ایمان کس درجے کا ہے، اس کے بارے میں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، اس لیے کہ ہماری آخرت ہمارے ایمان کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. ہماری آخرت میں ہمارا کیا مقام ہمیں ملنا ہے، ہمارا کیا انجام ہوگا، وہ سارا کا سارا ہمارے ایمان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اسلام تو منافقین بھی لے کر آئے تھے. ہم سوچتے ہیں نا کہ اسلام ہی کافی ہے، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، تو کلمہ تو منافقین نے بھی پڑھا تھا، مگر ان میں ایمان نہیں تھا. اسی وجہ سے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اس کا مطلب ہے صرف زبان سے کلمہ پڑھ دینا کافی نہیں ہے، ایمان ہونا ضروری ہے. اور اس کی بہت اچھی مثال ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان بدوؤں سے کہ تم اسلام تو لائے ہو، ابھی ایمان نہیں لے کر آئے. تو ایمان ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے. الحمدللہ ہم کلمہ پڑھ کے اسلام میں تو داخل ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان ہی دیکھنا ہے. کیا ہے ہمارا ایمان، کس درجے پہ ہے ہمارا ایمان؟ میرے پاس بہت ساری ای میلز آتی رہتی ہیں، ان میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں، دل سخت ہو گیا ہے، رونا نہیں آتا، دل پہ کچھ اثر نہیں ہوتا. بہت ساری مائیں کہتی ہیں، ہم بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، سنتے نہیں ہیں، کیا کریں ہم. اور ہم اپنا آپ بھی دیکھیں تو رمضان ہوتا ہے تو ہم اتنے نیک ہو جاتے ہیں، تراوی میں بھی کھڑے ہوئے گھنٹوں اور قرآن بھی بہت پڑھ رہے ہیں اور بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح ہم حج پہ آتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیا حالت ہوتی ہے کہ ہم بہت نیک بنے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر کیا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ پھر وہی پرانے والے ہو جاتے ہیں، جیسے جانے سے پہلے تھے اسی حالت پہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ ہم اس کو کہتے ہیں شیطان آ گیا ہے مجھ پہ. تو شیطان تو پہلے بھی تھا اور اس وقت بھی ہے جس وقت کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، شیطان تو کہیں نہیں گیا ہوتا. پھر کیوں ایسا تھا کہ کسی وقت شیطان ہم پہ اثر کر رہا تھا اور کسی وقت اثر نہیں کیا اس نے؟ اصل میں تو ہماری اپنی حالت میں کچھ تبدیلی آئی ہے کہ کبھی تو شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی وہ حملہ کرتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے. ایسے ہی دیکھیں جیسے کہ بیماریاں تو ہیں، جراثیم بھی ہیں، کبھی وہ جراثیم ہم پر حملہ کرتے ہیں اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اور کبھی نہیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہماری اپنی امیونٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے تو پھر جراثیم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پاتے، جب ہماری امیونٹی ویک ہوتی ہے تو جراثیم ہم پہ حملہ کرتے ہیں اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. تو اسی طرح ہماری ایمانی حالت ہے، جب ہماری اپنی ایمانی حالت اسٹرانگ ہوتی ہے، ہم اندر سے مضبوط ہوتے ہیں، تو شیطان کے حملوں کا بھی مقابلہ کر پاتے ہیں. اور جب ہماری ایمانی حالت ہی ویک ہو جاتی ہے تو شیطان بڑی آسانی سے اپنا کام دکھا دیتا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے. پہلے تو یہ دیکھیں نا، ہے کیا ایمان؟ آپ سب جانتے ہیں حدیث جبریل، جس میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، और उन्होंने कुछ सवालात पूछे थे, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है और एहसान क्या है, ये तीन सवालात पूछे थे। और नबी अलैहिस्सलाम ने ईमान के बारे में क्या जवाब दिया था कि ईमान ये अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, मलाइका पर ईमान, किताबों पर ईमान, आखरत के दिन पर ईमान, तकदीर पर ईमान। तो ये तो ठीक है, एक डेफिनेशन हो गई ईमान की, मगर ये आपको कोई कोई सवाल पूछा जाए आपके इम्तिहान में, कोई एकेडमिक्स की डेफिनेशन हो तो उस लिहाज से तो आप ये डेफिनेशन देंगे, मगर अपनी डेली लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करेंगे? डेली लाइफ में मुझे कैसे पता चलेगा ईमान क्या चीज़ होती है रोज़मर्रा जिंदगी में? तो ईमान असल में क्या है? सिंपल अल्फाज में ईमान है मेरा रब से मेरा ताल्लुक। मेरा रब से ताल्लुक कैसा है, मेरा मेरे रब से रिश्ता कैसा है, कैसा रिलेशनशिप है, ये है ईमान। और यही ईमान है जो घटता और बढ़ता रहता है, यही ईमान है जो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, यानी ईमान के दर्जे हैं। अब जब हमें पता चल गया कि ईमान मेरा अल्लाह से ताल्लुक है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह से ताल्लुक में कहीं कोई कमी आती होगी तो ईमान घट जाता है, अल्लाह से ताल्लुक में कहीं बढ़ावा होता होगा तो ईमान बढ़ जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। अब जबकि मुझे मालूम है कि ईमान के दर्जे हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि ईमान की बेसिस पर आखरत में मेरे साथ मामला किया जाएगा, तो फिर कितना ज़्यादा ये ज़रूरी है कि मैं और आप जानें कि हम कहाँ खड़े हुए, हम ईमान के किस दर्जे पे हैं, मेरा ईमान कम है या ज़्यादा है या एवरेज है, कहाँ है? देखिए आजकल आप लोग जहाँ पे भी जाते हैं आपका टेम्परेचर लिया जाता है, तो जिस्म की हरारत का तो हमें पता रहता है थर्मामीटर के ज़रिए, क्या कभी हमने अपने ईमान की हरारत के बारे में जानने की कोशिश की है, इसमें हरारत भी है या सर्द पड़ चुका है, ये किसी काम का भी है या हम बिल्कुल मुर्दा हो चुका है? जब मैं कह रही हूं ना कि ईमान घटता और बढ़ता रहता है, इट मींस कि वो कोई एक जामिद चीज नहीं है कि आपने एक दिन ईमान आपका बस जितना है उतना ही रहेगा, कोई ऐसी सॉलिड चीज नहीं है, ये कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा। तो कैसे इसको ऊपर करूं? इसका मतलब ऊपर जा सकता है, अगर कम है तो अल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा नुकसान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको ऊपर कर सकते हैं, मगर कैसे करें और है किस लेवल पर, ये भी नहीं अभी हमें पता। तो जहां हम अपने जिस्म की हरारत का पता रखते हैं, तो ईमान की हरारत का पता होना भी जरूरी है, हमें जानना जरूरी है हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। और इसका मतलब ये भी है कि ईमान को भी बढ़ावे की ज़रूरत होती है, हम ये रख के बैठ नहीं सकते कि जैसे कलमा हमने पढ़ लिया तो इस तरह ईमान हमने कह दिया कि हाँ मैं इन चीज़ों पर ईमान लाई, ये 6 ईमानियात हैं, बस मेरा ईमान पूरा हो गया। नहीं, ईमान की आबियारी करनी पड़ती है, यानी ईमान भी पौधे की तरह जिसको पानी देना पड़ता है, जिसको सींचना पड़ता है कि बढ़े ग्रो करे, वरना ये मुरझा जाएगा और अल्लाह ना करे मर भी सकता है, खत्म हो सकता है। तो पहले तो सवाल ये है कि ईमान कहाँ होता है, जिस्म के किस हिस्से में ईमान होता है? दिल में। मगर ये वो दिल नहीं है जिसको कहते हैं कि जिसमें शरियाने होती हैं, जिसमें जिसको अटैक होता है, हार्ट अटैक हो गया, ये वो वाला दिल नहीं, ये रूहानी दिल है जिसको कल्ब कहते हैं। और कल्ब के बारे में आप पढ़ते हैं ना कुरान पाक में, कल्ब कौफ लाम बैसे, वो चीज़ जो उलटती पलटती रहती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि कल्ब ऐसे ही है जैसे एक पर होता है ना, छोटा सा फैदर आप समझ लें, एक दरख्त पे है लगावा, और जब हवा चलती है तो उसको दाएं बाएं ऐसे उड़ाती फिरती है, इससे भी ज़्यादा तेज़ी से दिल उलटता पलटता रहता है। इसका मतलब जब दिल बदलता रहता है तो ईमान भी तो दिल में है, तो ईमान भी बदलता रहता है। इसी वजह से तो एक दिन ऐसा होता है कि हम कुछ सुनते हैं तो हम जारों कतार रोने लगते हैं, और कोई दिन ऐसा आता है कि हमें कुछ असर ही नहीं होता। कोई दिन ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि आज तो मैं इतनी चैरिटी करूंगी, वहां डोनेशन दूंगी, और अब बस अब मैंने कुछ नहीं जमा करके रखना, और कुछ दिन बाद हमारी ये हालत होती है कि हम कहते हैं ये क्या बात हुई, हर बात ये लोग मांगते ही रहते हैं, अब या मैं ही देती रहूं। एक दिन तो होता है हमारे लिए तहज्जुद पढ़ना इतना आसान होता है, फिर कोई ऐसा वक्त आता है कि फजर के लिए उठना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे पर क्यों गुजर रही हैं? क्योंकि कभी हमारा ईमान बढ़ा हुआ है और कभी हमारा ईमान नीचे आ रहा है। तो बढ़ता घटता तो ये रहता है, मगर मुश्किल तब है कि जब ये घटता है और फिर ऊपर नहीं आ रहा और हमें एहसास भी नहीं होता। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि मेरे ईमान का लेवल क्या है। मेरा ईमान घटा हुआ है, बढ़ा हुआ है, एवरेज है, किधर मैं खड़ी हूँ। उसके बाद जब ये डायग्नोज हो जाएगा तो फिर हम इसके इलाज के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। देखिए ना, हर बीमारी से पहले उसका डायग्नोज होना ज़रूरी है, और ईमान की कमी दिल की बीमारियों में से एक बीमारी है। इस बीमारी को दूर करना बेहद ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक पेपर लें, उस पे कॉलम बनाएं दो, ठीक है? पेंसिल कागज़ है ना आपके पास? देखिए, इल्म जो है वो कलम के बगैर नहीं आता। तो जब भी बैठें तो इल्म को नफ़ामंद बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको लिख लें, वरना ये बातें कल तक भूल भी जाएंगी। और आप कहेंगे हाँ एक लेक्चर सुना था मैंने, उसके बाद याद कुछ नहीं है। तो आप एक पेपर लीजिए, कॉलम बनाएं, उसमें पहले कॉलम में आप वो पॉइंट्स लिखेंगी, मैं आपको 14 के करीब पॉइंट्स बताऊंगी इंशाल्लाह। आप उन पॉइंट्स को बस मुख्तसरन लिखेंगी, और दूसरे कॉलम में आप अपने आप को मार्क्स देंगी, नंबर लगाएंगी अपने। 10 मैक्सिमम नंबर है। अगर आप समझती हैं कि वो चीज़ जैसे मैं आपको बताऊंगी उसके अंदर आपके नंबर पूरे पूरे हैं, तो 10 नंबर दीजिए खुद को। अगर आप समझती हैं कि ये तो मेरे अंदर है ही नहीं चीज़, तो 0 लगाएं। एंड में हम इसको इंशाल्लाह ऐड अप करके देखेंगे कि मेरे ईमान का लेवल किधर है, ठीक है? तो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ना। तो लेट्स सी हम कहाँ खड़े हुए हैं। उम्मीद है आपने कागज़ ले लिया होगा, रेडी होंगे। आप इस पे पहले कॉलम में नंबर 1 लिखें, और उसमें आपने लिखना है, एक बात सिर्फ आपने लिखनी, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं आपसे क्या पूछना चाहती हूँ। ऐसे ही है जैसे डॉक्टर पूछता है ना मरीज से कि आपके ये हैं सिम्टम, ये हैं सिम्टम, उसके बाद फिर डायग्नोज होता है कि हाँ बीमारी कहाँ पे है और कितनी है, किस हद तक है, फिर उस मुताबिक इलाज भी होता है। तो पहली चीज़ ये है कि गुनाह करना मेरे लिए कितना आसान है, बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है। मेरी यानी एबिलिटी या मेरा शौक गुनाह करने का, या मेरी रगबत गुनाह की तरफ कितनी है, क्या मैं गुनाह करना बिल्कुल मेरे लिए कैजुअल है? मिसाल के तौर पे नमाज छोड़ देना गुनाह है, मतलब मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अगर कभी छूट भी जाती तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बस ठीक है अब छूट गई, अब छूट ही सकती किसी से, ऐसा भी क्या हो गया, तो मेरे लिए कोई बिग डील नहीं है। कुछ ऐसी मजलिसें हैं जहां पे गुनाह है, मैं वहां पे जाके बैठ जाती हूँ, मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं इतनी फनेटिक तो नहीं हूं, मेरा इस किस्म का रवैया, मैं इंजॉय करती हूँ उस गुनाह में, और मैं मुझे कोई एहसास नहीं होता, मुझे शर्म नहीं आती, मुझे दूसरों के सामने उसके बारे में बताने में भी कुछ नहीं होता। ऐसी कुछ बातें हैं या ऐसे कोई कोई ऐसे ख्यालात हैं, मिसाल के तौर पे झूठ बोलना मेरे लिए बहुत कैजुअल है, गीबत करना बहुत आम सी बात है, कोई ऐसा मसला नहीं है और मुझे कोई एहसास भी नहीं होता। नेट पे कोई चीज़ ऐसी देखी सामने आई तो मैं अस्तगफिरुल्लाह करके उसको बंद नहीं कर देती हूँ, कहते अच्छा चलो खोल के तो देखती हूँ क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है, इतनी भी बड़ी क्या बात हो गई, ये तो होता ही है मुझे। यानी गुनाह करने में कोई ऐसी झिझक महसूस नहीं होती, कोई ऐसी आड़ नहीं है मेरे दिल के अंदर, कोई ऐसी बात नहीं आती कि जो मुझे रोक दे इस गुनाह को करने से, कोई ऐसा एहसास नहीं होता कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे इसका जवाब देना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें अपने आप को कितने नंबर देंगे, समटाइम्स होता है समटाइम्स नहीं, तो 5 नंबर दे दें, ऑलवेज होता है तो 10 नंबर दे दें, अक्सर होता है तो 7-8 नंबर दे दें, और कभी भी नहीं होता तो 0। ठीक है, इस तरह ही करके हम बाकी सवालात भी देखेंगे। तो अब समझ आ गई ना बात, यानी गुनाह करने में, और ये सिर्फ ये मैंने आपको चंद एक मिसालें दी हैं, आप और भी चीज़ें ज़िंदगी में देख सकते हैं, हराम खाना हो गया, हराम कमाई हो गई, और जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनका कोई एहसास भी रहता है या नहीं रहता, या लाइफ इज़ गुड? क्योंकि अक्सर हम ये कहते हैं कि मेरे ख्याल में मैं अच्छी ही हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ करती होंगी, इसका मतलब है गुनाह का एहसास भी नहीं है, करते जाते हैं एहसास खत्म हो गया। नंबर 2 में लिखें, अपने दिल को चेक करना है कि दिल की हालत क्या है, दिल सख्त है नरम है, बाज़ दिल जो होते हैं ना वो रॉक्स की तरह या उससे भी ज़्यादा सख्त होते हैं, जैसे सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया थुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारती औ अशद्दु कसवा। बाज़ दिल तो ऐसे होते हैं कि वो इतने सख्त होते हैं कि रॉक्स जो पत्थर है उससे भी ज़्यादा सख्त होते हैं, तो कैसे मुझे पता चलेगा मेरा दिल सख्त भी है या नहीं? आप देखें कि जब आप कुरान पाक सुनती हैं या कोई अल्लाह ताला की कोई बात सुनती हैं तो दिल की क्या कैफियत होती है, दिल नरम पड़ता है? अपने इर्द गिर्द जुल्म और ज्यादती की दास्तानें सुनती हैं तो आपके लिए सिर्फ न्यूज़ है या फिर दिल नरम पड़ जाता है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, रात में कभी आंख खुलती है तो कभी अल्लाह ताला के अजाबों की बात, कभी अल्लाह की मग़फ़रत की बात, या कभी अल्लाह की मोहब्बत से आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये मौके होते हैं। पता है दिल को चेक कब करना होता है? जब इंसान अकेला होता है तब देखना होता है कि दिल में क्या ख्याल आ रहे हैं, अगर तो बस मैं, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरे ये मेरे वो, मेरी चीज़ें, मेरे कपड़े, ये ही अगर आता रहता है, या उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे कि मैं तो बहुत हर्ट हो गई हूं, फलाने ने देखो मेरे साथ ये किया, फलाने ने मुझे ऐसा कहा, अगर यही बातें जहन में आती रहती हैं और इन्हीं पे रोना आता रहता है तो दिल सख्त है। अगर अल्लाह याद ही नहीं आता तन्हाई में भी तो दिल सख्त हो चुका है। अगर आंख रोती नहीं है ना जब कुरान सुनते हैं तो दिल सख्त हो गया। अगर जुल्म और ज्यादती की बातें सिर्फ न्यूज बन के रह गई हैं तो दिल सख्त हो चुका है। हम क्या करें, ये तो रोज ही होता रहता, तो दिल सख्त हो चुका है। तो दिल का जायजा लें, दिल कैसा है, क्योंकि ये भी बदबख्ती की अलामत है कि दिल सख्त हो जाए, इस पे चीजें असर ना करें, तो असर करती हैं या नहीं? कुरान पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस एक बुक ही पढ़ रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ पढ़ती जा रही हूँ, ना कोई गौर व फिक्र है, ना कहीं अल्लाह ताला के, जब कोई बात आती है मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब है, अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है, तो दिल डरता है कि नहीं कि अल्लाह पता नहीं मेरे साथ क्या होगा? जब इनाम याफ्ता लोगों की बात आती है तो क्या दिल में आता है कि अल्लाह काश मैं भी इनमें से हूं? तो तन्हाई में दिल का आलम क्या होता है, कुराने पाक पढ़ते हुए दिल की हालत क्या होती है, कुछ फर्क पड़ता है दिल पे या नहीं पड़ता। ठीक है, तीसरी बात, अपनी इबादत का जायजा लेना है। कितना वक्त और किस क्वालिटी की इबादत मैं करती हूं, दो चीजें हैं इसमें। एक नंबर वन, कितना वक्त देती हूं इबादत को, अल्लाह की इबादत में कितना मेरा टाइम जाता है और उस इबादत की क्वालिटी क्या है। देखिए, टाइम में तो ये है, इंसान कहता है मेरे पास कौन सा इतना टाइम है, मैं तो जॉब करती हूँ, मैं तो फलां है, मेरे तो घर के काम काज हैं, मेरे तो ये सब चीज़ें हैं। तो बात ये है कि कोई आपको काम काज छोड़ने को नहीं कह रहा कि आप जॉब छोड़ के मुसल्ले पे बैठ जाएं, ना कोई ये कह रहा कि घर छोड़ दें, बच्चे छोड़ दें और आप बस सारी जिम्मेदारियों को साइड पर डाल के बस आप अल्लाह अल्लाह कर रही तस्बीह पकड़ के बैठ गई। नहीं, ये नहीं कोई कह रहा, बल्कि इबादत में ये भी आ जाता है कि जब भी काम काज कर रहे हैं उस वक्त भी क्या जहन में ये बात है कि अल्लाह ये इसलिए कर रही हूँ कि तूने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी है, अल्लाह तुझे राजी करने के लिए कर रही हूँ, इसलिए अच्छे तरीके से कर रही हूँ कि कल को तेरे सामने खड़ी हूँ तो सुरखुरू हो जाए क्योंकि तूने मेरे ऊपर ये काम डाले हैं, अल्लाह तुझे राजी करने के लिए कर रही हूँ, इसको भी अच्छे तरीके से इसलिए कर रही हूँ कि हर चीज में एहसान अल्लाह ताला को पसंद है, हुसन पसंद है। जॉब कर रही हैं कोई, तो अब जॉब में ये एहसास हो कि अल्लाह ये रोजी हलाल की इसलिए कमा रही हूँ कि घर वालों की जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं, अपने शौहर का हाथ बटा सकूं, अल्लाह इसलिए कर रही हूं। तो यानी ये भी फिर इबादत बन जाता है। और इसके अलावा भी इबादत में आपकी तमाम फराइज जितने भी आपके ऊपर दीन ने रखे हैं, नमाज, रोज़ा, ये सब कुछ इबादत हैं। तो इनमें क्या एहसास रहता है और आप जो दीनी आपके ऊपर फराइज हैं इनमें वक्त कितना गुजरता है। ये तो नहीं है कि नमाज के लिए 5 मिनट और शीशे के आगे 10 मिनट खड़े रहते हैं, कुरान पढ़ने में थक जाते हैं मगर टीवी देखने में थकते नहीं हैं। फिर आप देखें क्वालिटी कैसी है, परफेक्शन कितनी है इन इबादात में, नमाज में, दुआओं में फोकस कितना है, अपने रब से बातचीत करते हैं ना आप जब नमाज पढ़ रहे हैं, तब नमाज एक एक्सरसाइज है क्या या रब से मुलाकात है, दुआ एक काम है जिसको पूरा करना है और उठ के जाना है, यहाँ इसमें फोकस है कि मैं अपने अल्लाह से मांग रही हूँ, कुरान पढ़ना क्या है। कभी दिन में एक दो दफा भी ऐसा होता है कि इतना दिल इसमें हो, कुरान का एक पेज भी पढ़ा है मगर अच्छी तरह फोकस होके पढ़ा है। सोचे हमने कहीं जाना हो किसी बड़ी आला मजलिस में, तो हम अपने आप को कितनी बार शीशे में देखते हैं, यहां से सही हूं, यहां से सही हूं, मेकअप सही है, लिपस्टिक कहीं और तो नहीं लग गई, बाहर तो नहीं निकली हुई, बाल सही है से मेरे बने हुए हैं, मैचिंग है ज्वेलरी के नहीं, कितना है तमाम करते हैं। और अच्छी बात है, ठीक है आप अच्छी तरह तैयार हो, हर चीज में एक्सलेंस होनी चाहिए, मगर इबादात में हुसन कहाँ है। नमाजों को कभी देखते हैं कि ये मेरी ऐसी है जो मैंने नमाज पढ़ी अल्लाह के आगे, ये हर तरह से ठीक है, इसमें तहारत भी सबसे अच्छी है, इसमें फोकस भी सबसे अच्छा है, इसमें वक्त भी सबसे ज्यादा मैंने दिया है, या उसमें लेजी होते हैं, जब इबादत का मामला है तो लेजी है, जैसे वो मुनाफिकीन के बारे में आता है ना, इज़ा कामू इला सलाती कामू कुसाला, जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, अल्लाह को बहुत ही कम याद करते हैं। तो जब भी इबादत होती है उसको टालते हैं, आगे आगे करते हैं, लेजी होते हैं, क्या मेरा रवैया इबादत के मामले में। अब देखें जितने भी नंबर हमने अपने आप को देने हैं ना, वो बहुत ऑनेस्टली देने हैं, क्योंकि या तो हम अपने अंदर की कैफियत को जानते हैं या अल्लाह जानता, कोई और नहीं जानता। मेरी कितनी भी कोई तारीफें करता रहे, आप बहुत अच्छी, आप बड़ी नेक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद जानती हूं कि मैं क्या हूं। तो ईमान बाहर की चीजों का नाम इतना नहीं, अंदर है ना, आप इसके सिम्टम्स आपको बताएंगे कि किस लेवल का है ये। इसलिए अगर आप अपने आप को ऑनेस्टली नंबर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इसके एंड में, लेक्चर के एंड में पूरी एक तस्वीर आ जाएगी कि मैं किधर खड़ी हुई हूँ। बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है, हाँ मैं अल्लाह की नज़र में कैसी हूँ, मैं अल्लाह की नज़र में बहुत अच्छी हूँ, बुरी हूँ, किस लेवल पे हूँ। तो ये भी पता चल जाएगा आज। इसलिए कि जब आप इसके बाद अपने आप को मार्क्स देंगे तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि मैं अल्लाह की नज़र में भी कहाँ खड़ी हुई हूँ। अगली चौथी बात ये है कि ये चेक कीजिए मेरे अंदर बर्दाश्त कितनी है। क्या मैं बहुत जल्दी अपसेट हो जाती हूँ, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती हूँ, और जब गुस्सा आता है तो मुझे कंट्रोल ही नहीं रहता अपने ऊपर। कौन मेरे पास है, कौन कितनी एज का है, कहाँ पे मैं हूँ, इसकी कोई परवाह नहीं होती। जो लोग जल्दी आपे से बाहर हो जाते हैं, बर्दाश्त की उनमें कमी होती है, किसी की बात सुन के पी नहीं पाते उसको, फौरन भड़क उठते हैं, किसी को गुंजाइश नहीं देते कि हो सकता है इस बेचारे ने ये बात कह दी होगी, हो सकता है आज इसका दिन सही ना गुजरा हो सकता है, पता नहीं इसको क्या परेशानी हो जिसकी वजह से इसने ये मुझे कहा है। नहीं, वो तो बस आपने कहा तो कहा, कैसे किसी की बात को भी सुनी अनसुनी नहीं कर सकते, माफ नहीं कर पाते, बस पकड़ के ही बैठ जाते हैं, अब नहीं छोड़ना, चाहे वो फैमिली वाले हैं चाहे वो बाहर वाले हैं। यानी सब्र और बर्दाश्त का मादा अगर कम है, बहुत जल्दी आप नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी माइंड कर लेते हैं, लोगों को डर लगता है आप माइंड ना कर लें, आप माफ नहीं कर पाते, आपका दिल तंग है, उसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि किसी की बात को पी जाए, तो समझ लें ईमान वीक है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल ईमान उस सब्रु व समाह, ईमान सब्र है और माफ कर देना। अगर सब्र का मादा ही नहीं, माफ कर देने का इतना हौसला ही नहीं है, तो फिर याद रखिए कि फिर ईमान की कमजोरी लाहक हो चुकी है, ईमान वीक है। अल्लाह अकबर। तो इसमें भी अपने आप को चेक करना है, लोगों की बातों पे मेरे रिएक्शंस क्या होते हैं, लोगों की रवैयों पे मैं फिर क्या करती हूँ। अच्छा, पांचवीं चीज ये है, दिन भर में अल्लाह ताला की याद कितनी आती है ये बताएं। बहुत आती है, कम आती है, कभी कभी आ जाती है। और ये मैं वो नहीं पूछ रही कि जब कोई मुश्किल आई हुई है, कोई घर में बीमार पड़ गया है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में है, तब तो सबको ही याद आता है, ये अल्लाह ही याद आता है, तो बीमार भी अल्लाह अल्लाह करने लगता है। और अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए अल्लाह को याद, लेकिन बात उस वक्त की हो रही है जब सब ठीक चल रहा है, सब फाइन है, तब अल्लाह कितना याद आता है। और ये सिर्फ अल्लाह अल्लाह तस्बीह पे करना वाला नहीं मैं पूछ रही, चाहे नमाज है, चाहे कुरान है, चाहे इससे अलावा जिक्र अजकार हैं, चाहे उठते बैठते ही वैसे ही अल्लाह को याद करना है, सब इसमें है। तो तब ये तो नहीं होता कि नमाजें ही भूल जाएं, खुशी के दिन है आप क्या, या तब अल्लाह ज्यादा याद ही नहीं आता, भूल ही जाती हूँ, जिक्र करना भूल जाती हूँ, दुआएं करनी भूल जाती हूँ, और इतना दिल भी नहीं लगता उनमें, और उठते बैठते और बहुत सी बातें हैं जो याद रहती हैं, फिर खुशी के दिन है, हंसी मजाक के दिन है, सब अच्छा चल रहा है, तो अल्लाह भी उसकी भी नाउज़ुबिल्ला ज़रूरत नहीं रहती। अल्लाह अकबर। याद रखें, जितना जिससे ताल्लुक़ होता है ना, उसकी याद भी उतनी ज़्यादा आती है। इसका मतलब ताल्लुक कमज़ोर है ना, और ताल्लुक ही तो ईमान है। हमने क्या बात की शुरू में, अल्लाह ताला से ताल्लुक, इसी का नाम तो ईमान है। इसका मतलब ताल्लुक में वीकनेस है। जिसके साथ ताल्लुक होता है ना, उसका तो टेक्स्ट भी हम बार बार पढ़ते हैं। बाद स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि हम आपकी जो ऑडियो होती है वो बार बार सुनते हैं, आपका जो मैसेज आप हमारे लिए भेजते हैं उसको हमने पता नहीं कितनी दफ़ा सुना, वो क्यों? जिससे मोहब्बत होती है उसके साथ ऐसा ताल्लुक होता है, दिल करता है बार बार उसकी आवाज़ सुने, दिल करता है बार बार उससे बात करें, उसकी याद भी बहुत आती है। कोई याद कराए ना करें, हम फिर उसको उस वक्त नहीं याद करते उसको जब हमें कुछ चाहिए होता है, फिर हम हर वक्त याद करते हैं। गाहे गाहे कोई चीज़ देखी तब कहा सुभान अल्लाह, कुछ मिल गया तब कहा अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ शुरू करने लगे तब कहा बिस्मिल्लाह। ये सब यादें हैं, ये सिर्फ रस्मी कलिमात नहीं हैं, ये यादें हैं। ठीक है, देखें अगर आपको ये आदत है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आदत को इबादत बना, ये बना लें कि आपकी आदत भी आपके लिए अजर का बाइस बने। और वो कैसे बन सकती है? कि वो सिर्फ रस्मी जुमले ना हों, रस्मी कलिमात ना हों, बल्कि उनसे अल्लाह का एक ताल्लुक आपके साथ, एक कनेक्शन का पता चले, एक ताल्लुक जुड़ जाए। ठीक है, तो ये याद कितनी है दिन में, नमाज के अलावा भी कितनी है, और नमाज में कितनी है। हम में से तो बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि उनको नमाज में भी अल्लाह नहीं याद आता, बाद की तो बाद की बात है, नमाज में भी याद नहीं आता, नमाज भी पढ़ लेते हैं तब भी कब अल्लाहु अकबर की और कब सलाम फेर दिया, पूरी नमाज में पता ही नहीं कि अल्लाह को याद भी करना था। नमाज नहीं सिर्फ गर्दाने हैं जिनको पढ़ते जा रहे हैं। तो नमाज में कितना याद आता है, कुरान पढ़ते वक्त कितना याद आता है, दिन भर में कितना याद आता है, जिनको मिस करते हैं ना हम वो याद भी बहुत आते हैं। तो अल्लाह को कितना मिस करते हैं, ये पता देगा मेरे अंदर ईमान कितना है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि ये भी एक अंदर छुपी हुई चीज़ है जिसको बहुत ज़रूरी है कि हम खुद जांचें, हम खुद देखें और हम खुद ही जान सकते हैं, कोई और नहीं ये जान सकता। वो ये कि मैं जब किसी मजलिस में जाती हूँ या मैं जो कोई काम करती हूँ, दीन का हो या दुनिया का हो, मेरी कितनी ख्वाहिश होती है कि लोग मेरी तारीफ़ें करें, मुझे नोटिस करें कि मैंने ये काम किया है, मुझे अहमियत दें, देखो जी इसने ये किया। किसी मजलिस में भी जाऊं तो मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं, तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, मेरी वाहवाह होनी चाहिए। ये भी कमजोर ईमान की निशानी है, इसलिए कि जो कुछ भी मैंने किया वो मेरी तो काबिलियत नहीं है। जिसके जहन में ये होगा कि सब कुछ तो अल्लाह ही का दिया हुआ, उसी ने कराया है, वो अपनी तारीफें तो नहीं चाहेगा। और जितना मेरा फोकस लोग रहेंगे ना और उनकी तारीफें और उनकी नजरों में जज जाना, ये जितना ज्यादा मेरा फोकस रहेगा उतना मेरा, इसका मतलब अल्लाह से ताल्लुक वीक है, लोगों से ताल्लुक स्ट्रांग है, अल्लाह से वीक है। क्योंकि मुझे ये नहीं है कि अल्लाह की नजरों में मैं जची हूं कि नहीं, अल्लाह ताला कैसा मेरे इस काम को देख के कर रहा होगा, कि कितनी उसने मेरी काम को एक्सेप्ट किया होगा, इसकी फिक्र नहीं है, लोगों की फिक्र है। इसको कहते हैं अरबिक में हब जहूर, शो ऑफ, जाहिर होने की चाहत, मैं रिकग्नाइज हूं, मेरा काम रिकग्नाइज होना चाहिए जी, और मेरी कोई तारीफ ही नहीं करता, तो इसके ऊपर अपसेट हो जाना, ये निशानी है कि ईमान वीक है। और याद रखिए जो मैं आपको बातें बता रही हूं ना, इसका ऑपोजिट है स्ट्रांग होना। यानी अगर ये चीज आपके अंदर नहीं है तो इसका मतलब है कि एक निशानी जो कमजोर ईमान की है वो आप में नहीं है, इसका मतलब आपका ईमान स्ट्रांग है। और अगर ये मेरे अंदर है तो इसको खत्म करके मैं अपने ईमान को स्ट्रांग कर सकती हूँ। जो मैं आपको निशानियां बता रही हूँ वो अगर आपके अंदर हैं तो उनको ओवरकम करने से ईमान स्ट्रांग होगा, और इनके अंदर ही एक इलाज भी आपके लिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि हम इनको डायग्नोज कर लें, मगर जैसे मिसाल के तौर पे एक मरीज कहता है कि भाई मैं शुगर बहुत लेता हूँ, आप डॉक्टर को पता चल गया कि भाई ये शुगर लेता है, इसकी वजह से इसका मोटापा है या क्या, तो अब वो ज्यादा जो चीज जिसकी ज्यादती की वजह से बीमारी है वो उसको कहेगा ना इसको खत्म करो इसको कम करो, वो ही उसका इलाज बन जाती है। इसी तरह अगर ये चीज मेरे अंदर है इसको खत्म करने से ईमान स्ट्रांग होगा, और इसी के अंदर इलाज छुपे हुए हैं। फिर आप देखें अगला पॉइंट ये है कि मैं देखूं कि मैं कितनी बखील हूं अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में। क्या जब मेरे सामने कोई सवाली आता है, कोई पैसे मांगता है अल्लाह के नाम पे, तो मेरे दिल में कितनी गुंजाइश होती है उसको देने में, या बस मैं चाहती हूँ कि मैं जमा कर करके रखती रहूँ, और मुझसे कोई मांगे तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, ये क्या बात है कि बस हर वक्त मांगते रहते हैं, और हमने ही क्या सबका ठेका लिया हुआ है, हमारी तो अपनी भी ज़रूरियात हैं। याद रखें इब्ने आदम का ना वो हदीस में आता है ना कि उसके पास दो वादियां भी सोने की हों तो वो चाहेगा मेरे पास तीसरी भी हो, और उसका पेट कब्र की मट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती। तो इंसान के लालच की तो ये इंतहा है कि आपके पास कितना भी हो जाएगा ना तो आपको यही होगा कि और मिल जाए ना, और मिल जाए और मिल जाए, तो ये लालच और का लालच, ये मुझे और चाहिए और चाहिए, और बुखल, ये मतलब है कि ईमानवी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि दो भूखे भेड़िए किसी बकरियों के रेवड़ में घुस के उतना नुकसान नहीं दे सकते जितना हुब्बे जाह और हुब्बे माल इंसान के ईमान को नुकसान देता है। ये तो मूड देने वाली चीजें हैं, ये ईमान को वैसे ही खत्म कर देती हैं। हुब्बे जाह, यही जो मैंने आपको पहले बात की कि मैं रिकग्नाइज हूं, मेरी तारीफ होनी चाहिए, मुझे कोई ओहदा मिलना चाहिए, मुझे तो कोई पूछता नहीं है, मैंने तो इतना काम किया है। हुब्बे जाह स्टेटस, मेरा स्टेटस हो, मेरा मकाम। आप देखते हैं आधी से ज्यादा ये लड़ाइयाँ जो मसाजिद में होती हैं, जो और दीनी इदारों में होती हैं, वो किस चीज़ के लिए होती हैं? ज्यादा वहां पे पैसे वैसे की तो बात होती ही नहीं है, क्या सैलरी की बात होगी, बस हुब्बे जाह। ये सियासतदान क्यों लड़ते हैं किसी सीट के लिए, क्या मसला होता है, इतने पैसे तो उनको भी नहीं मिल रहे होते, मगर हुब्बे जाह, मेरी गाड़ी के ऊपर झंडा लग जाए, मुझे लोग सलूट करें, मुझे कोई पूछें, मेरा बड़ा मकाम हो, मेरी वाहवाह हो, हटो बचो के शोर हो, ये चीजें इंसान के ईमान को शेव कर देती हैं, सिर्फ सिर्फ मूड देने वाली हैं, बिल्कुल सफाया कर देती हैं। और हुब्बे माल, और उन्होंने इतना बना लिया, हम पीछे रह गए, हमारे पास इतना होना चाहिए, और वो लालच खत्म ही होके नहीं देता। अल्लाहु अकबर। अगली बात, अगला पॉइंट लिखें, कौल व फेल में मेरे तजाद होता है या मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। क्या घर वालों के लिए तो बड़े बड़े लेक्चर हैं, झूठ ना बोला करो, गिबत ना किया करो, फलाना किया करो, नमाज वक्त पे पढ़ो, बच्चों को इतने भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन खुद होश ही नहीं है, दूसरों को नेकी पारसाई का लेक्चर और खुद की परवाह नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये अपने लिए कहती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ हम सबको ये देखना, हम जो कह रहे होते हैं वो कर भी रहे होते हैं या नहीं, इसमें मेरे कितने नंबर हैं। सारा जोर दूसरों को नेक बनाने पे है या कभी अपनी हालत पे भी गौर है। तो इसमें मेरे कितने नंबर आते हैं। अगला पॉइंट है आलमन नंबर 9 पे हम पहुंच गए। जब इंसान किसी नेकी को हकीर समझे तो तब भी उसका ईमान कमजोर है, ये तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं, यानी नेकी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यानी वो उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, कोई बिग डील नहीं है, तो क्या हो गया अगर नेकी को छोड़ भी दी तो, और कोई छोटी नेकी है उसको समझते हैं कि इसकी क्या मकाम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, हकीर समझते हैं नेकियों को। किसी को सलाम करना हो गया, किसी को मुस्कुरा के देखना हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि किसी नेकी को हकीर ना जानो, चाहे अपने भाई के बर्तन में पानी डालना ही क्यों ना हो, या अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलना ही क्यों ना हो। यानी आप किसी के ग्लास में जग से पानी डाल देते हैं ना, ये भी एक नेकी है। अब आप हाँ इससे क्या फर्क पड़ता, ये तो कोई चीज नहीं। कोई रास्ते से आपने छिलका उठा के साइड पे कर दिया कि कोई फिसल ना जाए, ये भी एक नेकी थी। लेकिन इसको हकीर जाना, हम तो बड़े बड़े काम करेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो हमारी शान के लायक ही नहीं है। तो तब भी ईमान वीक है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट ये है, नंबर 10, बहुत ज्यादा फोकस दुनिया पर और इसी में गर्क रहना। मैंने क्या कहा, बहुत ज्यादा फोकस, यानी मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरी चीजें, मेरी फैमिली, मेरी गाड़ी। ये नहीं कि आप इन चीजों की तरफ कभी तवज्जो ही ना दें, घर को फेंके रखें, छोड़े रखें, कभी उसको ना साफ किया ना उसकी तरफ तवज्जो दी तो मैं बहुत दीनी हो गई, ये नहीं बात कहा जा रहा। बात ये, बहुत ज्यादा इन्हीं चीजों के साथ अटैचमेंट, इन्हीं चीजों में गर्क रहना, इन्हीं में गुम रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 2 दफा खाना बनाते हुए देख लिया तो फरमाया कि आयशा, क्या तुम्हारा अब यही शुगल रह गया? इन चीजों में पड़े रहना, आज क्या पकेगा जी, आज क्या खाएंगे, इस हफ्ते कहां पार्टी है, किधर लंच है, कौन सी किटी पार्टी है, हाई टी कहां पे है, और बस सहेलियों के साथ यहां के प्रोग्राम, वहां के प्रोग्राम, किसके घर कौन सी दावत है, वहां पे मैंने क्या पहन के जाना है, मेरे पास उसके कपड़े हैं कि नहीं। इन्हीं चीजों पे तवज्जो, दर्जी ने कपड़े कब देने हैं, इस पे कौन सी लेस लगानी है, इस पे कौन से बटन लगेंगे। इंसान के पास याद रखें 24 घंटे ही हैं, इन 24 घंटों में एक ही चीज पे आप तवज्जो दे सकते हैं, या तो आप इन चीजों पे तवज्जो दे लें, या फिर आप अल्लाह ताला की दीन की तरफ तवज्जो दे लें, कुछ अपनी इबादात, कुछ अपनी आखरत की तरफ तवज्जो दे लें, या यहीं के लिए गुम रहे हैं। अगर सारी तवज्जो मेरी रोजमर्रा की चीजों पे ही है ना, डेली लाइफ पे है, सारा दिन इन्हीं ख्यालात में मैं गुम रहती हूं और यही फिक्रें मुझे रहती हैं, तो फिर समझ लें कि सब कुछ यहीं के लिए किया हुआ ना, फिर तो इसका मतलब है कि आखरत के लिए जब दिल में ख्याल ही नहीं आ रहा तो ईमान का लेवल क्या है। ये कमजोर ईमान की निशानी है कि बहुत ज्यादा दुनिया से अटैच्ड है दिल, यहां की चीजों में बेतहाशा खुबा हुआ है दिल। 80-90% मेरा जो टाइम है, मेरा जो फोकस है, मेरी जो अटेंशन है, वो इन चीजों पे है। 10% से भी कम मुझे कहीं आखरत की सोच आती है। तो अल्लाह ताला ने तो फरमाया मुम्मल हयात दुनिया अल्लाह मताल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो और कुछ भी नहीं है मगर धोखे का सामान है। आपने धोखे के सामान के साथ अटैचमेंट करी हुई है। मैं रोती हूं तो इस बात पे कि हाय मुझे फलां चीज नहीं मिली, कोई डिप्रेस में होती हूं तो इस बात पे कि ये मेरा नुकसान हो गया, और खुशी में आपे से बाहर हो जाती हूं, बस फिर तो खुशी की इंतहा नहीं रहती जब यहां पे कुछ कामयाबी मिल गई, कहीं एडमिशन मिल गया, तरक्की मिल गई, तनख्वाह बढ़ गई, बस फिर तो पार्टियां हो रही हैं, फिर क्या क्या, बस फिर तो वारे न्यारे हैं, शादी होने लगी है या कोई और ऐसी बस, यानी खुशी गमी सब चीज यहीं के साथ अटैच्ड है। ये नहीं कि हम खुश नहीं हो सकते, ये नहीं कि कभी हमें अफसोस नहीं होना चाहिए, होता है, हम इंसान है, मगर टू मच इन चीजों के अंदर होना, इसका एक नतीजा ये है कि इंसान का फिर दिल आखरत के कामों में नहीं लगता। जब उसकी सारी अटैचमेंट ही यही है, जब उसने इसी को घर बना लिया और इसी के अंदर रहने के ख्वाब हैं, तो फिर जाहिर है यहीं का नफा नुकसान उसको मैटर करेगा, आखरत का नहीं करता। और इस अटैचमेंट का पता चलता है उस वक्त जब किसी को सोचे कोई दुनिया की कोई नेमत मिलती है तो मेरा दिल कैसा होता है, अगर दिल में हसद पैदा होता है, अगर दिल में बुरा बुरा उसके लिए ख्यालात आने लगते हैं, अगर दिल को अच्छा महसूस नहीं होता, खुशी नहीं होती, हसद है, तो समझ लें दिल अटैच्ड है यहां से, क्योंकि आपके लिए वैल्यूएबल यहां की चीजें हैं, क्योंकि मानेगा कोई भी नहीं, मैं तो नहीं अटैच यहां से, नहीं नहीं मुझे तो बस आखिरत ही उसको प्रायोरिटी देती हूँ, दुनिया तो मेरे लिए कुछ नहीं है, कहेंगे तो हम सब यही। मगर ये है एक चीज चेक करने की कि मुझे खुशियां कब होती हैं, कोई नेकी करके खुशी मिलती है, मैं रोती कब हूं, जब मुझसे कोई गुनाह हो जाए, नेकी मुझसे रह जाए, कोई नेकी का मौका था मैं नहीं कर पाई, तब रोती हूं, या दुनिया के नुकसानात, या दुनिया के में कहीं पीछे रह जाना दूसरों से, या यहीं के मसले मुझे रुलाते रहते हैं, और खुशी तब होती है जब यहां पे कुछ मिल जाए मुझे। तो अगर यहीं के खुशियों और गमों को पाला हुआ है ना, तो फिर जाहिर है फोकस यहीं पे है, अटैचमेंट यहीं के साथ है, फिर ईमान कमजोर है। मैं अगेन फिर ये कहूंगी, इसका मतलब ये नहीं आप अपनी कोई चीज की केयर ही ना करें, केयर कीजिए, मगर अगर सब कुछ यहीं के लिए रह गया है, दिल खुश यहीं की चीजों से होता है, दिल गमगीन यहीं के किसी नुकसान पे होता है, तो फिर सोचिए अपने दिल की हालत किधर खड़े हैं, क्योंकि एक मोमिन के लिए तो ऐसा नहीं होता, एक मोमिन के लिए तो खुशियां और गम के पैमाने अलग होते हैं, ये नहीं होते। हाँ कोई चीज मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, कोई चीज चली गई तो फिर भी वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, तब भी वो कहता है कद्दर अल्लाह व मा शा अफाल, अल्लाह ने ऐसे ही लिखा हुआ था, जो उसने चाहा कर दिया, वो ऐसे नहीं करता कि भाई एकदम चीखो पुकार करने लगे, रोना धोना मच जाए, ये नहीं होता जाए। तो फर्क क्या है दोनों में? अगली बात ये, अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि क्या कभी आपको फील होता है कि मेरे अंदर कोई खला है, कोई कमी है, कोई ऐसी फीलिंग आती है? अपने आप को चेक करें, अगर ऐसा होता है, जैसे अपने अंदर एक खला महसूस होता है, जैसे हम कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं डाउन फील करना, डिप्रेशन नहीं मैं कह रही, वो डिप्रेशन एक बीमारी है जिसका इलाज होता है, उसको इसके साथ नहीं कंफ्यूज करना, डाउन फील करना, तो वो इसलिए होता है कि ईमान कम है, ईमान की कमजोरी है, इस वजह से इंसान अंदर डाउन फील करता है, क्योंकि ये रूह चाहती है कि अल्लाह से अटैच हो, जब रूह को उसकी गिजा नहीं मिल रही, तो रूह जब भूखी है तो वो अंदर से पुकारती है, उसके अंदर कमी है, वो अल्लाह से जुड़ना चाहती है, इसलिए वो आपको डाउन फीलिंग होती है। आप अपने आप को सोने चांदी से भर लें, कितने ही अच्छे डिजाइनर लिबास पहन लें, आपकी रूह खुश नहीं होगी इससे। अला बिज़िक्रिल्लाह तुतमाइन्नुल कुलूब, अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया कि अल्लाह का जिक्र ही है जो दिलों को सुकून देता है, तो दिल को सुकून तो नहीं ऐसे हासिल होगा, ये अंदर खला इसलिए है। आप कहते हैं सब कुछ ठीक है, पता नहीं क्या बात है, फिर भी वो पता नहीं क्या बात जो है ना आपको समझ नहीं आ रही, अल्लाह से ताल्लुक में कमी है, ईमान में कमी है। अगला पॉइंट ये है कि जब कोई आजमाइश आती है तो मेरा रिएक्शन क्या होता है, कोई भी बात मेरी मर्जी के खिलाफ मसलन हो गई है, मिसाल के तौर पे इतनी सी, तो वो जो टाइम पे पहुंचने का ना पहुंचने का जो सदमा था कि मुझे वहां पे इस वक्त में पहुंचना था, मैं नहीं पहुंच पाई, आइए क्या हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बिग डील बन जाती है, या इट्स ओके, ऐसे वही कहते हैं आपके अल्लाह ताला ने इसी तरह लिखा हुआ था, अल्लाह की यही कदर थी, ये कह देते हैं। देखें जब ओवर रिएक्ट करता है ना इंसान किसी चीज पे, तो ये भी ईमान में कमी की निशानी है, कि उसको ये बिलीफ नहीं है कि अल्लाह ताला ने जैसा चाहा वैसा ही होगा। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, आप जितना भी कुछ चाह लें होगा वो, आपने मसलन कहीं अपने बच्चे का रिश्ता किया, वो वहां वैसा नहीं निकला जैसे आपने सोचा था। आपने चाहा कि ये नौकरी आपको मिल जाए, वो नहीं मिली आपको। आपने चाहा मुझे यहां पे एडमिशन हो जाए फलां यूनिवर्सिटी में, वो नहीं हो पाया। आपने बड़ी मेहनत की थी इम्तिहान के लिए, इम्तिहान में जब रिजल्ट आया तो आपके नंबर कम थे, जितने आप चाह रहे थे उतने नहीं आए। आपने एयरपोर्ट पहुंचना था, रास्ते में इतना ट्रैफिक मिल गया, आप नहीं पहुंच सके, आपकी फ्लाइट मिस हो गई। फिर क्या करते हैं, घर में को कोई चीज तोड़ देता है, आपके शौहर ने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपको नहीं पसंद था, आपके बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया। यानी छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करना, और तो और गर्मी बहुत हो गई तो क्या क्या रिएक्शन होते हैं हमारे, तूफान मचा के रख देते हैं, शोर वावेला करने लगते हैं, हाय वाय करने लगते हैं, या कंपोज्ड रखते हैं खुद को, कंट्रोल में रखते हैं खुद को। ठीक है, चीजों का अफसोस होता है, मगर ऐसा कि इंसान भड़क ही उठे, बिगड़ बैठे, ओवर रिएक्ट करे, ये भी ईमान में कमजोरी की निशानी है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, बहुत ज्यादा बहस करना, चाहे वो दीन का ही मामला क्यों ना हो। हम सोचते हैं ना कि दीन के मामले में तो बहुत बहस करनी मेरी अच्छी बात है, नहीं। देखें, दुनिया का मामला हो या दीन का मामला हो, बहसें करना कभी अच्छा नहीं है। और उस वक्त तक बहस करते ही जाना जब तक दूसरा ना मान ले, यानी दूसरा तौबा कर ले, हम बहस से नहीं बाज आएंगे, ये सही नहीं है। दीन के मामले में भी क्यों सही नहीं है, उसमें क्या जायज है ऐसे करना? नहीं, इसलिए कि दीन की बात भी हम दूसरे तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हक बात सामने आ जाए, हम अल्लाह ताला को ये कह सकें, अल्लाह मैंने पहुंचा दिया था। इसलिए नहीं कि दूसरा मान जाए, अब मैंने इसको मनवाना है चाहे कैसे भी मनवाऊं, आज मैंने इसकी जान नहीं छोड़नी, ये नहीं है। इसलिए नहीं हम किसी को बताते, और अल्लाह को पता चल गया कि मैंने बता दी और मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, तो ये जो बहस करनी होती है ना, इट मींस मैं अपने आप को मनवाना चाहती हूं। बहस करनी इस हद तक कि यानी दूसरे को जिज करके रख दें, या दूसरे की जान ना छोड़ें, ये इस बात की निशानी है कि मैं ये चाहती हूं कि दूसरे को पता चले कि मेरे पास ज्यादा नॉलेज है और मेरी बात ऊपर होनी चाहिए, मैंने कह दिया तो इसी तरह इसको मान लेना चाहिए। इसका मतलब है कि ईमान कमजोर है। जहां पे भी इंसान अपने आप को मनवाने की दौड़ में लग जाता है ना, तो ईमान कमजोर है। एक और चीज, एक और पॉइंट, आखिरी पॉइंट है ये, या सेकंड लास्ट कह दें, कि मैं जिंदगी कैसे गुजार रही हूं, ये देखिए, जज कीजिए। जैसे कि मुझे यहां पे हमेशा रहना है, या जैसे कि मैं यहां पे टेम्परेरी रहने आई हूं, ये इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है ईमान के साथ। और हम में से कोई नहीं कहेगा कि मैं तो समझती हूं मैंने हमेशा यहां रहना है, वो तो कोई पागल ही होगा जो ये कहेगा, है ना? तो फिर कैसे पता चलता है कि मेरी सोच ये है कि मैंने हमेशा रहना, ये पता चलता है हमारी प्लानिंग से, हमारे जीने के ढंग से, हमारे तरीकों से। देखें, बड़ा आसान तरीका है इसका पता करने का, जरा सोचें, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे पास वक्त कम है, कोई डॉक्टर बता देता है कोई, तो क्या ऐसे ही वक्त गुजारूंगी जैसे आप गुजार रहे हैं? अगर इसका जवाब नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि हम सोचते हैं हमें यहीं रहना है, अभी बड़ा वक्त पड़ा है, अभी हमें यहीं रहना है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, कसरत से लज्जतों को तोड़ने वाली को याद करो। तो ईमान तब कमजोर हो जाता है जब इंसान सोचता है कि मुझे हमेशा यहीं रहना, हमेशा ना सही तो बहुत लंबा अभी अरसा पड़ा हुआ है, अभी थोड़ी मुझे जाना है, अभी बहुत टाइम है। ठीक, आपने जिंदगी को आप जांचेंगे, देखेंगे अपने इर्द गिर्द, तो बड़ी अच्छी तरह ये पता चल जाएगा। क्या ऐसे जी रही हूँ कि मेरे पास थोड़ा टाइम है, या ऐसे जी रही हूँ कि अभी बहुत टाइम है। और आखिरी जो पॉइंट है, इसके अंदर ही तीन चार बातें हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये उलामा ने जमा किए हैं अब ईमान का जायज़ा लेने के लिए। तो ये जो आखिरी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, इसमें जो चार चीज़ें हैं वो ये हैं कि उलामा कहते हैं, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा बोलना और ज़्यादा मेल मुलाकातें, ये भी इंसान की कमज़ोर ईमान की निशानियाँ हैं। अगर हर वक्त खाने को दिल चाहता है, दो दो मिनट में आप फ्रिज खोल रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सही चीज़ नहीं है। अगर सोते हैं तो बस सो ही रहे हैं और दोपहर तक सोते जा रहे हैं, बोलते हैं तो बोलना बंद ही नहीं करते, अगर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, इन चीज़ों से ईमान कमज़ोर होता है, समझ आई? और आप देखते होंगे, वैसे कभी नोट करें, ज़्यादा खा लें तो उसके बाद नमाज में सुस्ती आने लगती है, ज़्यादा सो लें तो उसके बाद भी इंसान का सर बोझिल हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप मेल मुलाकातें करते हैं ना, जब बहुत पार्टियां होती हैं, बहुत मिलना जुलना होता है, तो उसके बाद नमाज में भी खड़े होते हैं, वही बातें याद आ रही होती हैं, ऐसा होता है ना। तो अब इंटरेक्शन में ज़रूरी नहीं है आप किसी पार्टी में ही जाएं, ये भी इंटरेक्शन है, जो आपके सोशल मीडिया पे जो टाइम गुजरता है वो भी इंटरेक्शन है, टेक्सटिंग है, शेयरिंग है, सोशल मीडिया पे जितनी भी, फेसबुक से जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब आपकी इंटरेक्शन है। आजकल फिजिकल मुलाकातें तो कम हो रही हैं, मगर इस तरह से हो रही हैं ना, उतना ही आप देखेंगे ईमान कमज़ोर होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हम तीन टाइम ही खाएं, जब भूख लगे तब भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बोलना शुरू करें तो फिर बोलते ही चले जाएं, ज़रूरी नहीं हमारा आधा दिन ये इंटरनेट ही चेक करने में लगता रहे। तो रोज़े ज़्यादा रखें, सोएं कम, मुलाकातों को कम करें, ईमान बढ़ेगा। तो अब आप इनके अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर हैं आपके इसमें। और इलाज तो आपको मैंने एक तो ये बता दिया कि इन्हीं चीज़ों को अगर आप बैलेंस करेंगे, इन्हीं चीज़ों में जहाँ पे कम होने से ईमान गिरता है, इन्हीं को बढ़ा लेंगे तो ईमान बढ़ जाएगा। लेकिन इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या है? पहली बात ये, अपनी कंपनी देखें, अपना माहौल देखें, अपने माहौल में अपने इर्द गिर्द वालों को देखें, क्या इनसे जो भी मेरा ताल्लुक है वो मेरे अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करने वाला है कि कमजोर करने वाला है। अब मैंने जैसे आपको बताया, आपका जो मिलना जुलना है उसके ऊपर आपने कहा कि मैंने बड़ी कदगन लगाई हुई है, मिलती जुलती नहीं हूं मैं, बहुत ही कम मिलती हूं, बात वो मिलने जुलने की नहीं हो रही, बात है आपकी सोशल मीडिया पे किस किस कदर इंटरेक्शन है। आप चेक करें मेरे मैसेजेस, मेरा फेसबुक पे किसी को फॉलो करना, मेरा और जो भी जितने भी और इंस्टाग्राम है, ये सब चीजें हैं, इनके साथ मेरा ताल्लुक मुझे आखरत की याद दिलाता है, अल्लाह की याद दिलाता है, या अल्लाह तबारक व तआला से ये चीज़ें मुझे दूर करती हैं, ये चेक कीजिए। ये है हमारी कंपनी, ये है हमारा माहौल, आज तो यही माहौल बन गया। नंबर टू, अपने रोल मॉडल बनाए नेक लोग, जो आपसे ईमान में ज्यादा स्ट्रांग हो, जो आपसे नेकी में ज्यादा स्ट्रांग हो, और ये उनको देख के और ये सोचें कि मैंने ऐसे काम करने हैं। मसलन आप किसी की नमाज अच्छी देखती हैं, आप किसी का देखती हैं कुरान से ताल्लुक बहुत जबरदस्त है, आप किसी का देखती हैं कि ये सच हमेशा बोलती है, आप हम किसी को देखती हैं कि ये बहुत दीन में आगे है, तो उनको अपना रोल मॉडल बनाइए। इसी तरह नेक लोगों की, हमारे जो असलाफ हैं, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को जानिए, सहाबा की सीरत को जानिए, और ये देखिए कि इन्होंने कैसे अमल किए, कि इन हालात में रहते हुए ये कैसे दीन पे चलने वाले थे, मुझे भी अपने अमल को बेहतर करना है। नंबर तीन चीज देखें, रोजाना कुछ ना कुछ علم کی غذا ضرور لیجئے، یہ ہے روحانی غذا۔ ہمارا چونکہ آج کل وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے، تو ہمارے لیے علم حاصل کرنے کا وقت نکالنا مشکل ہو گیا۔ ہم اپنا فارغ وقت بجائے علم حاصل کرنے کے اور چیزوں پہ گزارتے ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑ کے پرائیورٹی یہ بنائیں، علم لینا ہے مجھے۔ اور علم لینا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے مثلا آپ کہیں ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ نے جی سی ڈی لگا لی اور ایک لیکچر سن لیا، یا آپ نے برتن دھوتے ہوئے ایک لیکچر لگا لیا یا کچھ، ٹھیک ہے وہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ سیریسلی علم لینا نہیں ہے۔ علم لینا ایسے ہوتا ہے کہ آپ واقعی بیٹھیں، اس بات کو سنیں، فوکس کریں، نوٹس بنائیں، اس چیز کی اور تحقیق کریں۔ یہ علم لینا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لیکچر سنا اور اس کے بعد آپ نے کوئی آپ کو پوچھے آپ نے کیا سنا، مجھے یہ نہیں پتا کیا سنا، پتا نہیں، مجھے نہیں پتا، بس بہت اچھا تھا۔ تو یہ نہیں ہے علم لینا ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ نے علم لینے کے لیے سنجیدگی اختیار کرنی ہے، اور اس کے لیے کوشش کیجئے کہ اگر کوئی کلاس آپ جوائن کر لیں ایسی جہاں پہ آپ ریگولر علم لیں، آپ دیکھیں گے جب آپ علم لیتے ہیں تو اس سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اور خاص الخاص اولین چیز ہے قرآن کریم کا علم لینا، قرآن کریم کو سیکھنا۔ تو آپ دیکھیں گے قرآن جس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، کوئی اور چیز میں بتا ہی نہیں سکتی آپ کو کہ ہاں یہ اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کس طرح ان کا تعلق تھا قرآن پاک کے ساتھ، ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور پوری رات گزار دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ تدبر کر رہے ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ اپنا وقت قرآن کے ساتھ گزاریں گے نا، اتنا آپ کا ایمان بڑھے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، تو گڑ زیادہ، جتنا آپ اپنا ایمان بڑھانا چاہتے ہیں اتنا قرآن سے تعلق مضبوط کر لیں، کبھی حفظ کریں، کبھی اس کو سیکھیں، تدبر کریں اس کے اوپر، کبھی دہرائی کریں اس کی، کبھی تلاوت کریں، کبھی سن لیا کریں، لیکن کھولیں ضرور اللہ کی کتاب کو ہر روز۔ اور جب کھولیں تو یہ کہیں اپنے آپ سے، ہادا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، ہادا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ہم قرآن کو بس کتاب کے طور پہ نہ کھولیں، ہم بھول جاتے ہیں نا، یہ میرے رب کا کلام ہے، اس شوق کے ساتھ کھولیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم رمضان تک پہنچیں، اب 3 مہینے تقریباً رہ گئے ہیں رمضان میں، تو ہم نے انشاءاللہ قرآن پاک کو روزانہ کھولنا ہے، اور بھاگ بھاگ کے ایسے اس کی طرف جانا ہے جیسے ہم اپنے فون کی طرف جاتے ہیں، کہ ہر 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد ہم فون ضرور اٹھا کے دیکھتے ہیں کسی کا میسج تو نہیں آیا۔ تو ہر 5-10 منٹ میں ہم ایک آیت چاہے پڑھ لیں، ایک آیت ضرور پڑھ لیا کریں، صرف ایک آیت۔ اگر 2 منٹ کا ٹائم ہے، چلو 2 منٹ بھی، اس میں ایک آیت تو پڑھی جا سکتی۔ تو اپنے وقت کی قدر جانی ہے، ہمیشہ نہیں رہنا یہاں۔ جس بندے کو یہ پتا ہوگا نا کہ میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، تو پھر وہ اپنی ایک ایک منٹ کی قدر کرے گا۔ وہی بات جو ہم نے پہلے کی، کہ جن کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہیں رہنا، وہ پھر اپنا وقت بھی ویسے ہی گزارتے ہیں، اور جن کو یہ پتہ ہے کہ میں نے چلے جانا، تو پھر وہ ایک ایک منٹ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کثرت سے دعا کیجئے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ دعا کرتے تھے؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ قلب الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اور یہ کبھی بھی پلٹ کے کہیں طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو ثبت قلبی، یعنی آپ ایمان کی مضبوطی کی دعا ہے یہ، جو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے پرانے کپڑے کی طرح، جیسے پرانا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ ایمان کی تجدید کر دے، ایمان کی تجدید کر دے دل میں، ایمان کو رینیو کر دے، اس کو نیا کرتا رہے۔ تو یہ کچھ ٹریٹمنٹس ہیں आप लोग पहले अपना आपने डायग्नोसिस कर लिया होगा अब तक, अब आप इसके बाद अपनी ट्रीटमेंट की तरफ भी आइए, और यही ट्रीटमेंट सबके लिए है। मगर ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी दी, आफियत हुई, तो इंशाल्लाह इस रमज़ान में हमारा यही प्रोग्राम है कि हम इसी पे बात करें कि हम अपने दिल को कल्बे सलीम कैसे बनाएं। जैसे हर साल हमारा एक रमज़ान का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12-13 साल से चल रहा है, आज की नेकी के नाम से, तो हर साल का एक टॉपिक होता है ना, तो इस साल हमने ये टॉपिक सोचा है। अगर ज़िंदगी ने मोहलत दी कि दिल को कैसे हमने कल्बे सलीम बनाना है, सलामत दिल बनाना है, कैसे अपने ईमान को हमने और मजबूत करना है, कैसे इसको इस काबिल करना है कि अल्लाह के आगे खड़ा हो सके, ऐसा दिल हो हम अल्लाह के आगे पेश कर सकें, तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप हम जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर वो हमारे YouTube चैनल पे या रहमा इस्लामिक इंस्टीट्यूट का जो चैनल है वहाँ से देख सकते हैं, या हमारे Facebook पेज पे रहमा इस्लामिक इंस्टीट्यूट के नाम से जो है, तो आप देख के उस हमें फॉलो कर सकते हैं इंशाअल्लाह वहाँ से भी, जो जहाँ पे भी सुन रहा है। तो आगे रमज़ान में इंशाअल्लाह आप रमज़ान तक ये तैयारी कीजिए, अपने कुरान के साथ ताल्लुक़ को मजबूत कीजिए, और एक फ्रेश ईमान के साथ आए, फिर हम वहाँ से आगे लेके इसको बढ़ेंगे। तो आज की टॉक का हासिल ये है कि अगर आपने इन ट्रीटमेंट्स के ऊपर तवज्जो दे ली, अपनी कंपनी को चेक किया, छोड़ दें वो वाली कंपनी जिस जो आपको अल्लाह की याद ना कराए, अगर आपने अपने कुरान से ताल्लुक़ को मजबूत कर लिया, अगर आपने नेक लोगों को अपना रोल मॉडल बना लिया और उनके जैसा चलने के लिए अपनी मेहनत कोशिश शुरू कर दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर बेनिफिशियल है। अदरवाइज ये एक जस्ट लेक्चर है, और लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद कुछ नहीं होता, बस लेक्चर है, सुन लिया। तो इससे वाकई फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि हम ट्रीटमेंट को आज से शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।